मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही अब स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं संजय कुमार, आपका गांव है सरसेना जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, और अजीत कुमार, आपका गांव है खारा गासीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज मैं मुख्य विषय के तहत आपसे साइंस के एक विषय पर बात करने जा रहा हूं और आप समझ गए होंगे ब्लैक होल के ऊपर। लेकिन इससे पहले मेरे पास बातें करने के लिए दूसरी ढेर सारी बातें हैं, तो आइए पहले उन्हें देख लेते हैं। जब भी दोस्तों आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक सिस्टमेटिक तैयारी करने के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में मुझे लगता है कि आपका सिलेबस बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि सिलेबस स्पष्ट नहीं होगा तो अखबार आप पढ़ेंगे या न्यूज आप सुनेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि नहीं ये मेरे काम की है, और अगर सिलेबस स्पष्ट है तो आप देखेंगे कि आपकी यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर जब आप कल अखबार पढ़ रहे होंगे या परसों न्यूज सुन रहे होंगे तो कहीं आपको यह सुनने को मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है ये महिलाओं के पक्ष में। वे महिलाएं जो क्रूर व्यवहार के कारण या प्रताड़ना के कारण किसी वजह से अपने ससुराल को छोड़कर या तो अपने मायके चली जाती हैं या किसी दूसरे शहर में चली जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें यह अधिकार होगा कि वो जहां भी हैं वहां बकायदे वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और वहां की अदालत को उनके मुकदमे की सुनवाई करनी पड़ेगी। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक होता यह था कि जैसे महिला की ससुराल मान लीजिए ए नामक जगह पर है और वहां उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, मानसिक यातना दी जा रही है, और वो छोड़ करके अपने उस ससुराल को और बी जगह चली जाती, मायके चली जाती, और वो पता लगा 500,000 किलोमीटर दूर है या थोड़ी सी भी ज्यादा दूर है चली गई। वहां नियम यह है कि उसको जहां यह शिकायत थी यानी कि जहां उसको प्रताड़ना दी जाती थी यानी ए नामक स्थान पर, वहीं के न्यायालय में मुकदमा दायर करना होगा। अब सीधी सी बात है कि वो बिचारी महिला है, वो कैसे तो अपने ससुराल वाले क्षेत्र में आएगी, और फिर ससुराल वाले वैसे ही कौन सा आराम से रहने देंगे, वो वहां अपने क्षेत्र में है, प्रभावशाली है, तो उसको बहुत तरह की दिक्कतें होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह डिसीजन दिया है कि वो जहां भी होंगी वहां वे मुकदमा दायर कर सकती हैं और बकायदे न्यायालय को सुनना होगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है आपके सिलेबस में महिला सशक्तिकरण वीकर सेक्शन के तहत महिला सशक्तिकरण स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, महिला परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो सिविल सर्विस की सफलता का राज यही सबसे बड़ा होता है कि आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन में एक और भी बात कही है, और वो बात ये कही है कि जो धारा है 498A, ये सब आपको नोट कर लेनी चाहिए, धारा 498A, उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने जो प्रताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया, क्रूर व्यवहार, उसमें दोनों चीजें शामिल कर ली हैं, शारीरिक प्रताड़ना यानी कि मारपीट की जा रही है, और मानसिक प्रताड़ना यानी कि दिमागी रूप से परेशान किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये 3 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया है, और जब पीठ कोई डिसीजन देती है तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मित्रों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नोट कर लेने चाहिए। दोस्तों, आज के अखबारों में आपने ये बात पढ़ी होगी, न्यूज चैनल्स पर भी था कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक फिल्म बनी थी, उनकी बायोपिक बनी थी, जिस पर अभी इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर रोक लगा दिया है कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा, क्योंकि यदि वो फिल्म रिलीज हो जाती है, 11 तारीख को आज ही रिलीज होनी थी, तो उससे मतदाता प्रभावित होंगे। तो ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके तहत आप इसे अलग से मेंशन कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में कुछ आता है। तो आप देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत नो डाउट इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, राइट? लेकिन चूंकि चुनावी आचार संहिता है और इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, तो उसको आधार बनाकर के यहां रोक लगा दी गई है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसका इस्तेमाल आपको अपने मेंस के आंसर में करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक खबर आपने और पढ़ी होगी, वो है जलियांवाला बाग कांड को लेकर। आपको मालूम है कि 1919 में हमारा ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन होता यह है कि जब कोई ऐसे विशेष अवसर आते हैं तो मेन और प्री दोनों के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब 100 साल पूरे हुए जलियांवाला बाग कांड के, 1919 में घटना हुई थी, ठीक है। तो अब जब 100 साल पूरे हो गए हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम मूवमेंट आपके सिलेबस में है तो जलियांवाला बाग पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस रूप में आपको तैयारी करने के लिए कुछ बहुत अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको सेलेक्ट करने चाहिए। और अब देखिए कि न्यूज क्या है। न्यूज इसकी यह है कि जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे, उन्होंने अपने हाउस में ये तो जरूर कहा कि ये जो कांड था एक शर्मनाक धब्बा था, एक शर्मनाक दाग था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। बहुत से मेंबर कहते रहे कि नहीं, इस पर माफी मांगे ब्रिटेन भारत से, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। और एक बैकग्राउंड के तहत मैं आपको बता दूं कि 1997 में जब महारानी एलिजाबेथ सेकेंड भारत की यात्रा पर आई थी तो वो वहां गई थी और उन्होंने भी माफी नहीं मांगी थी, माफी मांगने की बात नहीं थी। और स्पेशली मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चूंकि ये घटना हो रही है तो जब जनरल डायर यहां से फिर ब्रिटेन भेजा गया था, ब्रिटेन में उनके ऊपर बकायदे बहस हुई थी, तो उस केस को आप लोग, केस तो नहीं क्या था ये आप जरूर पढ़िएगा, निम्न सदन ने उसको अपराधी माना लेकिन अपर हाउस ने उनको अपराधी नहीं माना, फिर बहस चलती रही और इसके बाद कुछ नहीं किया गया, जो जनरल डायर है उसको डिमोट कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, उसको थोड़ा सा स्पेशली आप देख लीजिएगा। एक और खबर है दोस्तों कि जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो फिर से चुनाव जीत गए हैं और पांचवीं बार इसराइल के वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस मायने में ही नहीं है कि वो पांचवीं बार बने हैं, बल्कि इस मायने में है कि आपने नेतन्याहू जिसका नाम आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, भारत को बड़े अच्छे नजर से देखते हैं और भारत के साथ इनके काल में इसराइल के बहुत अच्छे संबंध विकसित हुए हैं, तो ये भारत के पक्ष में एक अच्छी चीज हो सकती है। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज के मुख्य विषय पर आऊं, मैं एक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। वो है, हम लोग कुछ समय से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी है, उन्हें बहुत ज्यादा निराशा है इस बात को लेकर के कि सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत पुअर है। ये सच है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि हमें इस समय बेचैनी के बजाय ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम एक लॉजिक तरीके से चीजों को सोचने की कोशिश करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे कि क्या हमारा सिलेबस इंजीनियर्स के पक्ष में है, इस पर हम सोचें, और क्या कॉपी जांचने में भेदभाव किया जा सकता है, इस पर हम विचार करें। मैं लगातार इस पर आप लोगों से बात करता रहूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर आप बहुत निराशा की मानसिकता से एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंस खो चुके होंगे, तो इसका प्रभाव आपकी तैयारी पर पड़ेगा। लेकिन मैं क्रमशः बात करता रहूंगा। आज मैं बात इस संदर्भ में कर रहा हूं कि मुझे एक मेल मिला है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कहने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि क्या हमारा जो सिलेबस है वो इंजीनियर्स के पक्ष में है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कि हां, वो इंजीनियर के पक्ष में है, इसलिए क्योंकि जो हमारा सी सेट का पेपर है उसमें जो लॉजिक और दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो उसमें चूंकि इंजीनियर के स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए उसी स्टेज पर उनका सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बाहर हो जाते हैं। ये उनका लॉजिक है दोस्तों, आप उनके लॉजिक पर थोड़ा सा विचार कीजिए। क्या सी सेट में जो अगर वो अधिक नंबर स्कोर कर लेते हैं तो क्या वह प्रीलिम्स में उनके सिलेक्शन का कारण बनता है? क्या यह सच है? वो तो केवल क्वालिफाइंग है। और 35% मार्क्स स्कोर करने हैं तो कोई भी कर सकता है, वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और फिर आप देखिए कि हमें एक दोस्त ने यहां पर एक चीज सोचना होगा कि ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं और सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आर्ट्स से रिलेटेड हैं। वो हमारे सब्जेक्ट्स को तैयार कर ले रहे हैं और पूरा का पूरा तैयार कर रहे हैं, जनरल स्टडीज तैयार कर रहे हैं, ऑप्शनल पेपर तैयार कर रहे हैं। और अगर हम शिकायत कर रहे हैं कि जो सी सेट में उनको माइलेज मिल जाता है तो क्या हम थोड़ा सा, चलिए मान लेते हैं कि उनको फायदा हो रहा है, तो क्या हम थोड़ा सा उसकी तैयारी नहीं कर सकते? मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो हमारे ले रहे हैं, सब नया तैयार, पूरी तरह से नई तैयारी कर रहे हैं 100%। और हम है कि केवल हम क्वालिफाइंग वाले में तैयारी नहीं कर सकते। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि केवल ये आप इसके आधार पर निष्कर्ष निकालिए कि क्या यह कारण सही है। और मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट ने मुझे ये मेल लिखा है, ये लगातार मेल लिख रहे हैं, इनके करीब करीब 15-20 दिन पहले मेरे पास मेल आया था एक और, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर मैं पिछले 3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूं लेकिन मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यहां मेरा फिर से सवाल है कि वो सच में मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसका उन्होंने जो उत्तर दिया है वो ये बता रहा है कि वो कितने लॉजिकल तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा लॉजिकल के पक्ष में ही रहता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी आपको लॉजिकल तरीके से करनी होगी, तभी बेड़ा पार हो सकता है। राइट दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर जो ब्लैक होल पर है। समय मेरे पास बहुत कम है, इसे श्याम वीवर भी कहा जाता है। ब्लैक होल के बारे में आप थोड़ी सी बातें जानते होंगे। कल एक तस्वीर जारी की गई है और जो पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें ब्लैक होल को दुनिया देख पा रही है। ब्लैक होल, श्याम वीवर, एक बहुत बड़ा गर्त, एक बहुत बड़ा गड्ढा, आप इसे सोच लीजिए, एक ऐसा गड्ढा जो बिल्कुल काला है, काला दिखाई दे रहा है, ऐसा गड्ढा श्याम वीवर। आप कल्पना कर लीजिए कि यह गड्ढा है जो एकदम काला है। इसकी जो ताकत होती है यह है कि इसके आसपास से अगर कोई भी चीज गुजरती है तो ब्लैक होल उसे अपने आप में खींच लेता है, यानी कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि इसके आसपास से कोई चीज बच ही नहीं सकती। मतलब एक ऐसे राक्षस की तरह है जो अपने आसपास के सारे चीजों को अपने पेट में निगल लेता, सांस लेता और सारी चीजें उसके अंदर समा जाती है। समा जाने के बाद कोई भी छोटी सी चीज तक बाहर नहीं आ पाती, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका भी चित्र लिया गया है। अब आप सोचेंगे कि जब वो काला ही है तो उसका चित्र कैसे लिया गया, सोच नहीं चाहिए। उसका चित्र इस रूप में लिया गया मित्रों कि इस ब्लैक होल में लगातार दुनिया भर के प्रकाश वाली चीजें समाहित होती रहती हैं। तो जब वो समाहित होती रहती हैं और लगातार चलता रहता है तो उस ब्लैक होल के चारों तरफ एक तरह से प्रभामंडल बन जाता है, मतलब प्रकाश का गोल घेरा बन जाता है और उसी को चित्र में पकड़ा गया है। तो वो प्रकाश का एक रिंग, आपको लाइट की एक रिंग आपको दिखाई देगी और बीच में काला हिस्सा दिखाई देगा जिसे आप श्याम वीवर कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। मित्रों, अखबारों में आज इसके ऊपर काफी लिखा गया है, प्लीज आप उसकी कटिंग रखें और उस पर एक बहुत अच्छा नोट तैयार कर लें। मेरे पास अभी समय नहीं है लेकिन कल इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेन दोनों ही दृष्टियों से, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आप सबसे डेफिनेटली करूंगा। राइट दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। करेंट कंटेंट के तहत फिर से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हिंदू में छपा था उसका हिंदी आपको प्रोवाइड किया गया है। ग्राम सभाओं के अधिकार छीनता तंत्र, की कैसे हमारे ग्राम सभाओं के अधिकार कम होते जा रहे हैं। चित्रांगदा चौधरी का लिखा हुआ ये लेख है, आपको उसे भी पढ़ना चाहिए। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, दीपिका माहुर, लोकेश पवार, मुकेश यादव, संदीप खरड़े और शिवांश। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।